माता जी अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा आसन थे वर्णत्रया तीन रंग ही निसंदेह हास्य तुम्हारे पुत्र कृष्ण के ग्रहणता स्वीकार करते हुए अनुयुगम तनु विभिन्न युगों के अनुसार दिव्य शरीर शुक्ल कभी गौर श्वेत रक्त कभी लाल तथा और पित्त कभी पीला इदानीं कृष्णताम गतः संप्रति उन्हें उन्होंने श्याम काला रंग धारण किया है। अनुवाद आपका यह पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। भूतकाल में उसने तीन विभिन्न रंग गौर लाल तथा पीला धारण किए और अब वह श्याम काले रंग में उत्पन्न हुआ है। अन्य द्वापर युग में वह शुक तोता के रंग में भगवान रामचंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। अब ऐसे सारे अवतार कृष्ण में एकत्र हो गए हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की गर्भ मुनि ने कृष्ण की स्थिति कुछ कुछ बतलाते हुए और कुछ कुछ छिपाते हुए संकेत किया कि आपका पुत्र महापुरुष है और वह विभिन्न युगों में अपने शरीर का रंग बदल सकता है। ग्रहणता शब्द सूचित करता है कि कृष्ण स्वेच्छा अनुसार चुनाव कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में वे भगवान हैं, अतः जो चाहे सो कर सकते हैं। वैदिक साहित्य में विभिन्न युगों में भगवान द्वारा धारण किए जाने वाले रंगों की व्याख्या की गई है। अतः जब गर्गमुनि ने यह कहा कि आपका पुत्र ये रंग धारण कर चुका है तो अप्रत्यक्ष रीति से उन्होंने यह कहा वह भगवान है। कंस के अत्याचारों के कारण गर्गमुनि यह तथ्य प्रकट नहीं करना चाहते थे, किंतु अपरोक्ष रूप में उन्होंने नंद महाराज को बतला दिया कि उनका पुत्र कृष्ण वास्तव में भगवान है। श्री राजीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ नाम पुस्तक में इस श्लोक का तात्पर्य दिया है। प्रत्येक में भगवान या तो श्वेत शुक्ल या लाल या पीले रंग में प्रकट होते हैं, किंतु इस बार वे अपने मूल काले स्वयं श्याम रूप में साक्षात प्रकट हुए हैं। और जैसा कि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की है, उन्होंने नारायण की शक्ति प्रदर्शित की। क्योंकि इस रूप में भगवान पूर्ण स्वरूप स्वयं का प्रदर्शन करते हैं, अतः उनका नाम श्री कृष्ण अथवा सर्व आकर्षण है। वस्तुतः कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं, अतः विभिन्न अवतारों के विभिन्न भिन्न स्वरूप कृष्ण में विद्यमान रहते हैं। जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो अन्य अवतार के सारे गुण उनमें पहले से वर्तमान रहते हैं। अन्य अवतार कृष्ण के आशिक रूप हैं, आशिक स्वरूप होते हैं किंतु कृष्ण स्वयं परम पुरुष के पूर्ण अवतार हैं। यह समझ लेना चाहिए कि परम पुरुष चाहे शुक्ल रूप में प्रकट हो जाए हो चाहे रक्त या चाह पित्त रूप में, वे रहते वही पुरुष हैं। जब वह विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो वह विभिन्न रंग धारण करते हैं। जिस तरह की सूर्य प्रकाश में सात रंग होते हैं, कभी कभी ये रंग पृथक पृथक प्रकट होते हैं, अन्यथा सूर्य प्रकाश चमकीले प्रकाश जैसा दिखता है। कृष्ण अवतार में विभिन्न अवतार हैं, यथा मनवंतर अवतार, लीला अवतार तथा दस अवतार सम्मिलित रहते हैं। जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो अन्य सारे अवतार उनके साथ साथ प्रकट होते हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन किया है, अवतारस ही असंख्य या हरे सत्वा निधिर द्विजा यथा विद्युना कुले सारशा सुअर्श। विभिन्न अवतार सतत प्रवाहित जल की तरह लगातार प्रकट होते रहते हैं। जिस तरह प्रवाहित जल में लहरों की संख्या की गणना नहीं की जा सकती है, उसी तरह अवतार की कोई सीमा नहीं है, और कृष्ण सभी अवतारों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वे समस्त अवतारों के स्रोत हैं। कृष्ण अंशी हैं और अन्य अंश हैं, इस स्रोत सारे जीव अंश हैं, हम समेत सारे जीव अंश हैं। मैं वांश जीव लोके जीव भूता सनातनः। ये अंश विभिन्न माप के हैं, मनुष्य जो शुद्ध अंश हैं तथा देवता विष्णु तत्व तथा अन्य सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं। नित्य नित्यानाम चेतनस चेतनानाम कठ उपनिषद 2:2-13। कृष्ण सारे जीवों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं, और जब कृष्ण विद्यमान रहते हैं तो सारे अवतार उनमें निहित रहते हैं। श्रीमद्भागवत के 11 स्कंद में प्रत्येक युग के अवतार का क्रमानुसार वर्णन हुआ है। भागवत का कथन है, कृत शुक्ल चतुर्वैत्रयो रक्तस्मृश्यो द्वापर भगवान श्याम तथा कृष्ण त्रिश्वा कृष्णम। हम देखते हैं कि कलयुग में भगवान पीत वर्ण के गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए हैं, यद्यपि भागवत में उन्हें कृष्ण वर्णम कहा गया है। इस सब कथनों में समानता स्थापित करने के लिए यह समझना चाहिए कि यद्यपि कुछ युगों में कुछ रंग का प्राधान्य रहता है, किंतु प्रत्येक युग में जब जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे रंग उपस्थित रहते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण या काले रंग से रहित प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें साक्षात कृष्ण माना जाता है। ईदानिनम कृष्णताम गता। विभिन्न वर्णों में प्रकट होने वाला वही आदि कृष्ण अब प्रकट हुआ है। आसन शब्द बतलाता है कि वे सदैव विद्यमान रहते हैं। जब भी भगवान अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होते हैं तो वे कृष्ण वर्ण के रहते हैं, यद्यपि वे विभिन्न रंगों में प्रकट होते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु छन्न है, अर्थात वे कृष्ण होकर भी पीले रंग में आवृत रहते हैं। इसलिए गौड़िया वैष्णव इस निष्कर्ष को मानते हैं कि यद्यपि चैतन्य महाप्रभु पीत रंग में प्रकट हुए हैं, किंतु वे कृष्ण हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपंगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमृता। ओम अज्ञान तिर्मंदस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांशात् श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथविदं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखाकांक्षा। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामे नमस्ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे कुछ इस भागवत श्लोक पर चर्चा करने की अनुमति दी है, और मैं चाहता हूँ सारे भक्तगण मुझे आशीर्वाद दें, कुछ जो पढ़ा लिखा हूँ जो कुछ सुना हूँ कुछ उसको बता सकूं, आप लोग से शेयर कर सकूं। इसका अनुवाद वह फिर से पढ़ेंगे। आपका यह पुत्र हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। भूतकाल में उसने तीन विभिन्न रंग गौर लाल तथा पीला धारण किए और अब वह श्याम काले रंग में उत्पन्न हुआ है। अब ऐसे सारे अवतार कृष्ण में एकत्र हो गए हैं। तो इसमें गर्गमुनि बता रहे हैं यहाँ पे, जब उसने बच्चे का वो देखा कि हाथ की रेखाएं या पूरा पढ़ के वास्तु शास्त्र से जन्म कुंडली से कि बच्चा क्या क्या आगे के लिए क्या क्या करेगा। जल्दी भारत का ये संस्कार है कि बच्चे की जैसे प्रवृत्ति रहती है उसके अनुसार उसको उसके आगे की शिक्षाएं मिलती हैं। तो बचपन में ही उसका देखा जाता है कि इसका किस प्रकार की कर्म है, किस प्रकार का नेचर रहेगा, जिससे उसको आगे उसके उसके अनुसार उसका शिक्षा दे सकें। तो पहले प्रभुपाद के इसमें वैसा जीवन में कि बहुत छोटे थे तो माता पिता ने सब कुछ ग्रंथ रखा, पैसा रखा, सब कुछ रखा था और प्रभुपाद जाके फिर भागवत को छू लिए थे। तब से सब लोग समझ गए थे कि प्रभुपाद आगे चल के बहुत बड़े भक्त बनेंगे। जब तो बहुत छोटे थे तो ऐसे रखा जाता है कि सिर्फ बच्चे की प्रवृत्ति को जाना जाए। तो यहाँ पे जन्म कुंडली में वो बता रहे हैं कि ये जो बालक है साधारण बालक नहीं है। जय श्री श्री राधा। तो ये जो बालक है वो एक सामान्य बालक नहीं है और वो पूरा बताना भी नहीं चाहते और बता भी रहे हैं, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर था कहीं कंस को ये बात न पता चल जाए। जैसे पिछले कई दिनों में इस चर्चा हो रही थी, कंस भूल रहा है वो बालक कहाँ है, और अगर ये पता चल जाए कि राजगुरु गर्ग मुनि ने किसी का नाम संस्कार किया है तो उसका पूरी तरह से निश्चित हो जाए कि वो बालक ही कृष्ण है। इसलिए वो बताकर भी नहीं बता रहे थे कि ये जो बालक है वो कौन है। तो उन्होंने बताया ये बालक पिछले जन्म में तीन रंगों में आया और इस जन्म में ये श्याम के रूप में आ रहा है, काले रूप में। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान जय श्री श्री राधा गिरिधर की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्रीला प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी ने बताया कि कैसे कि हम सब लोग इस दुनिया में हम अपना शरीर स्वयं नहीं इच्छा अनुसार पाते हैं। हम जब पैदा हो जाते हैं तो हमको पता चला मैं तो ऐसा दिखता हूं, और कई बार लोग ऑपरेशन करते रहते हैं अपने चेहरे को बदलने के लिए या चीजों को बदलने के लिए या तरह तरह की चीजें अपनाते हैं। लेकिन जब भगवान आते हैं तो वो जिस रूप में आते हैं वो स्वयं अपनाते हैं। और कई बार अगर हम चालू करेंगे तो जैसे पहली बार पढ़ा था मैंने इसको, तो भगवान लाल कलर के हैं, भगवान पीले कलर के हैं, भगवान नीले कलर के हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा कैसे, कभी हमने देखा तो है नहीं। जब पाश्चात्य देश में हमारे भक्त लोग चले गए तो एक चर्च में गए थे, वहां के फादर ने पूछा कि आपके यहां भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान के बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने बताया भगवान हमारे यहां ब्लू कलर के दिखते हैं, नीले कलर के। तो पाश्चात्य देश जब लोगों ने सुना तो उनका पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया कि भगवान नीले, और क्या करते हैं, गैया चराते हैं, अरे भगवान आपके। तो जितना उसके सोच विचार था उनका वो सब कुछ शॉर्ट सर्किट कर रहा था कि ऐसे कैसे भगवान नीले भगवान। तो कई बार लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कभी हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है या रूप है उसका जो रंग है वो नीला पीला हरा कैसे, भाता नहीं है वो। तो वो चीज तो हमें अगर जो हमारे या तो गोरा दिखे तो ठीक दिखता है, काला दिखे वो भी गड़बड़े। पूर्वत अफ्रीका में एक बार कक्षा दे रहे थे तो अफ्रीका के भक्त लोग बैठ रहे थे, बोले भगवान का जो रूप है वो काले कलर का है, अफ्रीका में जनरली लोग काले काले होते हैं। तो सब लोग बड़े खुश हो गए, अरे भगवान हमारे जैसे ही है। तो प्रभुपाद जब तुम्हारे जैसे काले नहीं है, उनका काला थोड़ा अलग है, ये बताने के लिए कि हमारा भौतिक स्तर पे अच्छा बुरा सफेद गोरा काला ये एक अलग ही गणना में चलता है। शास्त्र माता पीत स्कंद में उसमें आता है प्रसन्नम वदनम भोजनम। वदनम का अर्थ है भगवान के अंग, वो कैसे है, प्रसन्नम प्रसन्न, कैसे प्रसन्न है, भोजनम यानी कमल है, कभी कमल के पत्तों को आप देखेंगे, कमल जब खिलता है तो उसमें एक चमक रहती है, एक जीवन रहता है, पत्तों में ही देखने से लगता जीवन है, प्रसन्न रहता है वो कैसा रहता है? जब कमल का पत्ता आपने देखेंगे तो उसमें उसके तो पत्तों को देखेंगे पानी पड़ा रहता है तो लगता है जैसे वो हंस रहा है, प्रसन्न रहता है। तो भागवतम बोलता है प्रसन्नम वदनम, जो भगवान का जो शरीर है, स्वरूप है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। हर शरीर का हर अंग को देखें, इसलिए हम जब तक विग्रह को देखते हैं तो चाहे दुनिया में किसी विग्रह को चले ही सब प्रसन्न दिखते हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि भगवान की नाक यहाँ पे इस वाले इस कारीगर नाक थोड़ी ऐसे बनाई, उसने थोड़ी ऐसे बनाई, इसलिए ज्यादा अच्छा दिखता है। आप किसी विग्रह को देखिए वो प्रसन्न ही रहता है, क्योंकि वो अध्यात्म स्तर पर चला जाता है, वो भौतिक स्तर से रुकता नहीं है उनकी सुंदरता। तो यहां जो हम सुने भगवान हरे कलर के, नीले कलर के हैं या सफेद कलर के आए, तो वो रंग तो है वैसा, लेकिन रंग कैसा है वो? प्रसन्न। रंग कैसा है वो? प्रसन्न। उसको देख के लगेगा जी रहा है, उसको देख के लगेगा पूरा अंग प्रसन्न है, और उसको देख के आपके अंदर जैसे इसी में आगे श्लोक आएगा कि तीसरे स्कंद में आता है यश निकेतमल भी परिसेव्यमानम भूत्वा स्वया कुटिल कुंठला वृंद जुष्टम मीना द्वयाश्रयम अधिशिव अब्ज नेत्रम धाये मनोमयम अतिरिक्त उलसत भ्रूहु। तो इसमें आ रहा भगवान की सुंदरता की वर्णन हो रहा है। यश श्री निकेतम अलभि परिसेव्यमानम भूत्वा स्वया कुटिल कुंठल वृंद जुष्टम। अगर आप सावन के महीने में कहीं जाएं तालाब के किनारे, वहां कमल का फूल खिलेगा, उस कमल को फूल में देखेंगे, बड़ा सुंदर होते हैं सावन के महीने में, और कमल है तो जाहिर भोरे आएंगे, तो चारों ओर भोरे उसके घूम रहे हैं और दो तरफ से मछली आके बैठ गई है दो साइड से। तो वो जो सुंदरता है सावन के महीने में, अगर भगवान का चेहरा देख लिया तो वो फीका पड़ जाता है। कैसे? भगवान का चेहरा गुलाब की तरह खिला रहता है, कमल की तरह गुलाबी रहता है, आंखें जो है दो मछली की तरह है, मीना स्वयं एक मीन यानी मछली की तरह है, और यश निकेतम अली और जो भौरे हैं उनके जो गुंगराले बाल हैं वो उस तरह भौरे गुंगराले बाल उनके भौरे के समान उस कमल के ऊपर मंडराते रहते हैं। और जब भगवान आप देखेंगे कि कमल जब खिलता है तो भौरे एक जगह नहीं रहते, घूमते रहते इधर से उधर इधर से। तो भगवान जब भागते हैं तो उनका पूरा ये जो भौरा है भौरे से बाद वो भी उछलते रहते हैं। कैसा लगता है जब भौरे कमल को चखने के लिए चारों ओर से प्रयास कर रहे हैं। आपने दामोदर आश्रम में हम लोग गाते हैं लशत कुंडलम, इसका अर्थ क्या है लशत कुंडलम? अगर लशत का मीनिंग देखेंगे, तात्पर्य देखेंगे, तो लशत का एक अर्थ होता है कि घूम रहा है, क्योंकि क्या हुआ यशोदा माँ पीछे से आई और काना तो खड़े थे ऐसे, सामने देखे बंदर की आंखें, बंदर को लग रहा है डर, तो बिना पीछे देखे भागे धावनम। तो उसमें क्या हुआ लशत कुंडलम, लशत क्या हो गया, कुंडल क्या हो गए, घूमने लगे। और क्या लशत करता है कि कुंडल एकदम पूरे एक त्रिकोणी तरह के होते हैं, शार्प शेप, तो बहुत ही बारीक तरीके से उसका वो रहता है। और क्या होता है लशत का अर्थ है कि लशत का एक और अर्थ है चमक रहे हैं कुंडल, कुंडल क्या रहे चमक रहे, चमक क्यों रहे कुंडल? भाई कुंडल है चमके तो है ही, कभी आप गहने लाएंगे या जेवरात लाएंगे तो अपने आप चमकेंगे, लेकिन बोला जा रहा है ये चमक रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए यहां सत्वत मुनि ने बड़े ही धीरे धीरे से, फिल्म चालू होता है फिल्म में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है बारी बारी कि पहले थोड़ा सा दिखाते हैं फिर थोड़ा सा दिखाते हैं। तो पहले दिखाया था उसमें कि सब लोग नमा ईश्वर, सब लोग नम ईश्वर को, कोई ईश्वर है उसको सब लोग नमन कर रहे हैं। फिर दिखा रहे हैं लशत कुंडलम, अभी भगवान के बारे में कुछ नहीं बताया, उन्हें कुंडल के बारे में बताया कि कुंडल क्या है चमक रहे हैं। सनातन गोस्वामी बताते क्यों चमक रहे हैं, क्योंकि उन कुंडलों ने कृष्ण नामक आभूषण पहना हुआ है। कुंडलों ने क्या पहना है? कृष्ण नामक आभूषण, कृष्ण आभूषण के आभूषण है, ऐसा है उनका स्वरूप। कि अगर आभूषण हम पहनते हैं आभूषण कुछ अच्छे दिख जाए, हीरो पहनता है आभूषण फिल्म में क्यों थोड़ा स्मार्ट दिखेगा, मेकअप करना पड़ता है, लेकिन जब कृष्ण आभूषण पहनते तो आभूषण लशक हो जाते हैं। इस तरह सरस्वत मुनि ने चालू किया कि ये जो व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहा हूं ना, वो ऐसा व्यक्ति कि जब उसने कुंडल पहने तो वो लशक हो गए, जब उस व्यक्ति ने कुंडल पहने तो कुंडल क्या हो गए, लशक हो गए। तो हम जब भगवान का स्वरूप सुनते हैं नीला पीला या हरा, तो कई बार हम सोचते ये लाल कैसा होगा, ये हरा, राम भगवान हरे में आए थे, अजीब से लगता है। लेकिन हम शास्त्रों से और आचार्यों के धारा के माध्यम समझेंगे कि वो जो स्वरूप बताया जा रहा है वो ऐसा स्वरूप नहीं है, वो अलौकिक स्वरूप है, प्रसन्नम वदनम, वो प्रसन्न रहता है। अगले श्लोक में आता है इसी में तीसरे में, हासम हरे अवनता अवनता खिला लीक सागर, हासम हर शोका सुसागर। इस दुनिया में या हमारे जीवन में शास्त्र बोलते हैं कि लोग शोका सुसागर, शोक का सागर बनाया है लोगों ने। लोगों ने किस चीज का सागर बनाया, शोक का सागर है। फिर बता रहे हैं कि हासम हरे, कि भगवान के जो गाल है वो एक क्रिस्टल होता है, उसके समान एकदम पूरा वो स्मूथ है। स्मूथ क्या बोलेंगे, मुलायम नहीं, जिसे चमक जाएगा चीजें, इतना इतना स्मूथ है कि कोई भी उस पर आएगा तो उसका प्रतिबिंब बन जाएगा उसमें, क्योंकि गाल पूरे स्मूथ है। और जब कुंडल जब चमकते हैं ऐसे तो उन्हें गाल पे प्रतिबिंब बनता है। और जब भगवान के जो ओठ है रक्त, उसमें पड़ा होगा ना अपने बिंबा, बिंबा जो फ्रूट होता है दामोदर में पड़ता है अपन दामोदर लीला में, तो जो बिंबा का फ्रूट है जो लाल कलर रक्ता लाल कलर का, तो उस तरह भगवान के ओठ होते हैं। तो भगवान जब, और जो दांत है हासम हरे, वो जैस्मिन बर्ड होता है ना, अगर आप जैस्मिन बर्ड के फूल लेके आएंगे उस तरह मोतियों की तरह वो लगे रहते हैं। और जब भगवान मुंह खोला उन्होंने, क्योंकि ओठ होते हैं गुलाबी, वो पड़ता है दांतों पर उसका प्रतिबिंब, तो पूरे दांत हो जाते हैं रोजी पूरे के पूरे। और जब वो हासम हरे, जब भगवान किसी की तरफ ऐसे देखे हंस देते हैं, तो आपका जो शोक का सागर है ना वो उड़े आता है, वो उड़े आता है, ऐसा बोलता है शास्त्र। ऐसा है उनका रूप, नहीं तो वो शोक का सागर हम लोग लेके बस बैठे रहेंगे, कैसे हैं, अच्छे हैं बस, किसे पूछिए क्या बोलते हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं, है दुखी लेकिन बोल नहीं सकता, क्यों, अगर बोलेगा मैं दुखी हूं तो आप खुश हो जाओगे, अगर मैंने बोल दिया कि मैं दुखी हूं तो दूसरा भक्त और दूसरा जो भी होगा बोलेगा वाह चलो मैं अकेला नहीं हूं, ये भी है। इस दुनिया में बहुत लोग दुखी हैं, इसलिए लोग क्या बोलते हैं, अच्छे हैं, सबके सब दुखी हैं, सबके सब चेहरे में मुस्कुराहट और मन रोता रहता है, मन रोता रहता है, खोया रहता है, क्यों, शोक का सागर जो बना है, शोक का, शोका सुसागर, शोक का सागर बना के रखा है आपने, तो आप उस सागर में डुबकी लगाएंगे तो शोक मिलेगा और कुछ नहीं है। और उसको एक ही तरीके कैसे, जब भगवान का आप हंसता हुआ प्रमुख मुख खुद देखिए तो क्या होगा, उड़े आएगा, पूरा उड़े आएगा। उन शब्द ब्रूहू कहा जाता है कि इस दुनिया में हाँ सम्मोहनम रचितम निज माया यस्या भ्रू मुंडने मुनिकृते मकरा ध्वजस्या। अगर आप कामदेव देखेंगे, कामदेव का धनुष बाण किस तरह का होता है पता आपको, गन्ने का पेड़ होता है ना उससे उसका धनुष बाण बनता है, उससे वो तीर चलाता है। तो इस दुनिया में सबको मोह में रखा है किसने, कामदेव ने। लेकिन जब भगवान अपने धनुष बाण चलाते हैं, उनका धनुष बाण क्या पता है आपको, भगवान का धनुष बाण हाँ उनकी जो ब्रू है, जो उनकी ये क्या बोलते हैं आईब्रो, वो उनके क्या है, धनुष बाण। तो किसी पे ऐसा साइड टर्न करते हुए आईब्रो उठाया तो बाण निकलता है और कामदेव क्या हो जाता है, घायल। जिसने पूरी दुनिया को घायल किया वो जब भगवान के निकट खड़ा होता है तो भगवान से जब बाण निकलता है उन सब ब्रू नाचते हुए हैं, इनकी इनकी जो आईब्रो है भगवान की वो नाचती रहती है, उछलती रहती है। तो जब उससे तीर निकलते हैं तो जब कामदेव पड़ता है सम्मोहनम, पूरा बेचारा मोहित हो जाता है। ऐसा है भगवान का सुंदरता स्वरूप। नीला है, पीला है, सही है, लेकिन अलौकिक है, लेकिन अलौकिक है। फिर हम पढ़ते हैं उसमें दामोदर आश्रम चलता है अपन, जो तीसरा पैराग्राफ में आता है, इति दिक्षा नीला वीर आनंद कुंडे। इति मतलब ये, दृक चल रहा है, लीला मतलब भगवान की लीला, स्वलीला मतलब भगवान की खुद की लीला, आनंद कुंडे। जब भगवान स्वयं लीला करते तो क्या बन जाता उससे, कुंड, राधा कुंड। आपने सुना था राधा कुंड, श्याम कुंड, कुंड मतलब जगह, राधा कुंड मतलब वहां पानी भरा हुआ, किसका, राधा रानी का प्रेम का है। तो आनंद कुंड एक कुंड बन गया है, किसका, आनंद का। कैसे भगवान उन्होंने आया, अपनी लीलाओं के द्वारा, अपनी लीला के द्वारा उन्होंने एक कुंड बना दिया है जो है आनंद का। स्वघोषम निमज्जंतम, स्व मतलब वो, घोषम मतलब उनके सारे सारे गोपा गोपी गोपाल गौ सब पूरे जो वृंदावन रहते हैं, निमज्जंतम क्या कर दी उन्होंने, उन सबको पकड़ के उनकी डुबकी लगा दी। निमज्जंतम मतलब वो अपने लीलाओं से, कैसी लीला, जैसे दामोदर लीला हुई, जिस तरह दामोदर लीला में भगवान जब यशोदा उनको पकड़ रही थी तो यशोदा की तरफ से एक वात्सल्य प्रेम से वो देख रही थी, किसको, कान्हा को। और कान्हा देख रहा था उनको भक्त वत्सल्य प्रेम से, और वो जब प्रेम आपस में एक दूसरे को देख रहे थे, उससे क्या बना, एक कुंड बना। कैसा कुंड, आनंद का। उस कुंड में क्या हो रहा था, अपने जितने भी भक्त हैं भगवान उनको क्या कर देते हैं, टुक्की लगा देते हैं। तो यशोदा माँ को ऐसा कुंड बना भगवान ने अपनी ही लीला करके, कैसी लीला, दामोदर लीला करके, और फिर क्या किया, उनको टुक्की लगा दिया। तो भगवान की लीलाएं भी कैसी है, अलौकिक है। आपने वो फिल्म देखा है कृष्ण और कंस, देखा है लोगों ने, यहाँ पे रिलीज हुआ था, टॉकीज में आया था, किस किस ने देखा है, बहुत कम लोगों ने देखा है। अच्छी फिल्म है, एक रिलायंस ने बनाया था, कार्टून फिल्म बनाई थी, कृष्ण कंस 3D टॉकीज में आई थी। तो उसमें भी एक सीन आता है, ये आता है कि एक बार क्या हुआ, सारी गोपियां गई कान्हा का शिकायत करने, किससे, यशोदा से, और किससे करेंगे, पहुंचे तो कान्हा छुपा हुआ यशोदा के पीछे, और जहां उन्होंने बोलना चालू किया वो बाहर निकलता है और गोपियों को देखता है, और जो वो देखता है और क्या चलाता है, उल्सद ब्रूह, तीर मारता है। जब तीर मारा तो गोपियां बोली, अरे अभी तो देखा भी नहीं जा रहा है, देखे बिना रहा भी नहीं जा रहा है। भगवान की सुंदरता ऐसी रहती है कि देखा भी ना जाए, देखे बिना, वो बोलने गई थी, शिकायत करने गई थी, बोले बोला भी नहीं जाए, भाई बोले बिना रहा भी ना जाए। ऐसा होता है आनंद का कुंड, ऐसा होता है आनंद कुंड, डूबा भी ना जाए, डूबे बिना रहा भी ना जाए। एक बार राधा रानी बहुत परेशान, बहुत परेशान, वो बोले क्या परेशानी, बोले हमारा जीवन इस तरह हो गया है जैसे आपने किसी जानवर को बांध के घर के अंदर बंद करके रख दिया है और आग लगा दी है, और अभी घर में आग लगा तो एक ही तरीका, क्या करें, भाग जाओ, लेकिन आपने क्या किया, ताला लगा दिया। तो हम लोग घर में फंसे हुए हैं और जल रहे हैं, कैसे हुआ, हम लोग कृष्ण के विरह में जल रहे हैं लेकिन वो ताला क्या लग गया है, वो ताला क्या लगा हुआ है। इस राधा रानी बोली, इस जीवन जो हमको मिला है उसमें हम लोग कृष्ण के विरह में जल रहे, कृष्ण छोड़ के चले गए हैं, तो एक ही तरीका है, क्या, जीवन को त्याग दो। लेकिन भगवान ने यह वचन दिया कि मैं वापस आऊंगा, उस वचन से ताला लगा दिया हमारे जीवन में, तो हम जीवन को भी त्याग नहीं पा रहे हैं। तो जिया भी ना जाए, जिए बिना रहा भी ना जाए, मरा भी ना जाए और जिया भी ना जाए। ये कुंड बनाते हैं भगवान आनंद के, जहां वो अपने भक्तों को निमज्जंतम क्या करते हैं, टुबकी लगा देते हैं, जिससे क्यों, प्रेम का सागर आता है। हासम हरे, जो शोक का सागर उनके जीवन में बैठा हुआ है वो पूरा का पूरा सागर उड़ जाए। अभी आपने सुना होगा, जब एक कोलावेचर श्रीधर नाम का एक फस्त हुआ करता था नवदीप में, बहुत गरीब था बेचारा। थोड़ा बहुत जो भी दिन भर भगवान का भजन करता था, केले के पत्तों का व्यापार करता था, उससे जो धन संपत्ति आती थी आधा वो गंगा माँ की सेवा में लगाता था, आधा से उसका काम चलता था। लेकिन रोज सबसे कम दाम पे वो अपना सामान बेचता था। और रोज शाम कौन आता था पता आपको? निमय आता था। क्या करने आता था? मोल भाव करने। क्या करने आता था? मोल भाव करने। वो बोले 2 रुपए का, तो 2 रुपए नहीं चाहिए, हम 1 रुपए मिलेंगे। ठीक है 1 रुपए मिलो फ्री मिलेंगे, तो कुछ फ्री में हम नहीं लेंगे। तो 2 घंटा रोजाना क्या होता था? मोल भाव। क्या होता? मोल भाव। फिर जब महाप्रभु ने अपनी महाप्रकाश लीला में जब कोलावृष शिवा को बुलाया और उसने पूछा, हे वत्स, तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं उसको पूर्ण कर सकता हूं। तो बताओ उसने क्या इच्छा बोली? आपसे भगवान बोले क्या इच्छा है, तो आप बोले बहुत थोड़ा टाइम दो, लिस्ट बना देता। इतनी सारी इच्छाएं हैं, इतनी सारी सागर है। किसका सागर है? इच्छाओं का। पूर्ण नहीं होती तो शोक बन गया है, तभी तो शोक का सागर बना। कैसे बना? जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तो उनसे पूछा क्या इच्छा है आपकी, किसको पता क्या इच्छा थी कोलावृष श्रीधर की? मैं चाहता हूं वो जो निमय आता था ना मेरे घर में मोल भाव करने, वही निमय मुझे चाहिए मोल भाव करते हुए। आप बताइए इस दुनिया में अगर किसी सबसे बेकार सेवा लगता है तो बाजार से परचेज करके लाना। क्यों? मोल भाव करना पड़ता है, कौन जाएगा? स्पेशली जो मंदिर के डिवोटी होते हैं, जब बहुत सारा परचेज करना होता है, बहुत मोल भाव करना पड़ता है, बहुत लड़ाई होता है, आधे से ज्यादा भक्त जाना ही नहीं चाहते। क्यों? इस दुनिया में अगर हम बार्गेन करेंगे कोई गेन नहीं है, लेकिन भगवान के साथ अगर मोल भाव करेंगे उसमें केवल गेन ही गेन है। वो जो बार्गेन हम भगवान के साथ करते हैं उसमें गेन होता है। ऐसे होते हैं भगवान कि एक बार भी आपने उनका स्पर्श किया किसी भी रूप में, भले ही मोल भाव करने गए हो, भले ही मोल भाव आपका दिल छीन लेते हैं, आपका दिल छीन लेते हैं। तो इस तरह जो भगवान के यहां पर रूप आ रहा है कि भूतकाल में वो सफेद लाल या पीला या श्याम रूप में भी आ रहे हैं, तो ये रूप है बहुत अलौकिक है, आकर्षित है, सबको आकर्षित कर लेता है। प्रभुपाद जिसमें आ रहे हैं, साधारण तौर पे पीला कलर पहले भी महाप्रभु आते थे, लेकिन वो स्वयं महाप्रभु नहीं थे। जैसे हर बार स्वयं कृष्ण नहीं आते, वैकुंठ कृष्ण आते थे, तो इस बार कृष्ण ही जो स्वयं कृष्ण आए और स्वयं कृष्ण जो महाप्रभु के रूप में आए वो आए। आप समझ पा रहे? वही आए। तो जो महाप्रभु के जो आए थे, ये जो पीला स्तर है, जो पीला रूप आया, वो उसमें भी सारा सब कुछ है, उसमें भी सब कुछ। कैसे? अब देखिए, एक बार जो महाप्रभु के जो हम लोग पूजा करते हैं, बहुत जरूरी है इस जीवन में, क्योंकि वही हमारे उद्धार करने आए हैं। उनका औजार क्या है? उनका औजार उनका ही शरीर है, उनका जो सुंदरता है वो उनका औजार बन जाता है। अब देखिए बाकी भगवानों को क्या बोला गया है, किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला, कृष्ण को क्या बोल दिया गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम बोल दिया या लीला पुरुषोत्तम, महाप्रभु क्या बोला, प्रेम पुरुषोत्तम बोला गया। महाप्रभु क्या बोला गया, उनका औजार है कि वो इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे कि आप उनके प्रेम से कंट्रोल होकर अपने आप समर्पण कर दोगे। ऐसे हैं, इतनी दया करेंगे, इतनी दया करेंगे, क्योंकि कृष्ण जब कृष्ण रहते हैं, आप देखिए जाकर बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी आता है, वो तो रोज ही आता होगा, कभी कभी नहीं आता होगा, ज्यादातर इस दुनिया में भौतिक जगत में लोगों को गुस्सा ही आता है। तो कभी आपने कुछ गड़बड़ किया और किसी को आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर आपको बचना है ना तो क्या करना चाहिए पता है? उस व्यक्ति के गुस्से से बचना है तो क्या करना चाहिए पता है? पूरे सीन को भावुक बना दीजिए, पूरे सीन को जब आप भावुक बना देंगे तो जब उसके अंदर बहुत सारा इमोशन आएगा तो गुस्सा नहीं कर पाएगा वो गुस्सा, क्योंकि जब इमोशन हैवी आता है तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। जब इमोशन हैवी होता है तो दिमाग काम करना बंद होता है, तो क्या होता है फिर? वो लॉजिक से नहीं दिखेगा कि आप सही हो गलत हो, उसको दया ज्यादा आएगी, उसको क्या आ जाएगी, दया। तो कई वक्त ऐसा होता है कि भक्त लोग कृष्ण के पास जाते हैं बहुत, लेकिन कृष्ण भावों की यात्रा छोड़ देते हैं इनको। तो शास्त्र बोलता है वो जो भावुक रूप है कृष्ण का, दया वाला रूप कृष्ण का है, वो है राधा रानी का रूप, वो है। इसलिए रघुनाथ दास में बोलते हैं कि कृष्ण मुझे बुलाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, क्या भरोसा इनका क्या। लेकिन अगर राधा कृष्ण साथ साथ हैं तो नहीं भी बुलाएंगे तो भी मैं दौड़ के जाऊंगा, क्यों, किसी पे भरोसा है, किसी पे, राधा रानी पे भरोसा है। तो यही राधा रानी जब कृष्ण बैठे हुए थे एक बार तो उनके मन में विचार आया, जिसके जिसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है। क्या विचार आया कि ऐसा क्या है मुझ में, तीन विचार आए थे, क्या है मुझ में जिससे राधा रानी इतना आकर्षित हो रही है, ऐसा क्या चीज है जो वो महसूस कर रही है, और वो क्या है जो वो महसूस कर रही है, वो क्या वो महसूस कर रही है, मतलब क्या चीज वो महसूस कर रही है और कैसा वो महसूस कर रही है, और क्या है मुझ में। ये तीन विचार आए, तुरंत से कोई बात नहीं, मैं तो योगेश्वर हूं, मैं कौन हूं, कृष्ण योगेश्वर, अपनी सारी योग नीतियों से मैं पता कर लूंगा कि क्या चीज है। उन्होंने सब कुछ योग लगाया, पता नहीं चला, क्या नहीं चला, पता नहीं चला कि क्या है उनके अंदर। ठीक है कोई बात नहीं, मैं सबसे ज्ञानी भी हूं, तुमने ज्ञान को भी लगा दिया लेकिन फिर भी पता नहीं चला कि क्या है उनके अंदर। फिर उन्होंने क्या हुआ, तप किया, तप भी लगा दिया लेकिन तप लगाने के बावजूद ही पता नहीं चला कि क्या चीज चल रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, योगा भी किया और योग से समाधि किया, सब कुछ किया लेकिन फिर भी पता नहीं चला कि उनके अंदर क्या है, राधा रानी क्या महसूस कर रही है, ये क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्लू भी नहीं मिला। तब उन्हें समझ में आया कि उन्हें स्वयं आना पड़ेगा राधा रानी के भाव में, इस चीज को जानने के लिए, महसूस करने के लिए क्या हो रहा है, समझने के लिए। तो राधा रानी में कुछ ऐसा था जो कृष्ण में कमी था, कृष्ण महसूस, उसको पाने के लिए कृष्ण आए महाप्रभु के रूप में, उसको पाने के लिए। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं कि अगर हम भी ज्ञान लगाएं या कर्म लगाएं या योग लगाएं या कुछ भी लगाएं, हम नहीं समझ पाएंगे ये प्रेम क्या होता है, हम नहीं समझ पाएंगे ये चीज हो क्या रहा है, ये रंगों को हम नहीं समझ पाएंगे ऐसा, ना ही भगवान के अलौकिक रूप को समझ पाएंगे। हमको स्वयं आना पड़ेगा भक्ति करने, और भक्ति करना पड़ेगा तब जाके भक्ति का जो स्वाद होता है उसको चख पाएंगे। बाकी कितना भी ज्ञान लगा दें, योग लगा दें या तप कर दें, जब स्वयं श्री कृष्ण नहीं समझ पाए तो हम कैसे समझ पाएंगे। जब स्वयं श्री कृष्ण, उनको समझने के लिए क्या हो रहा है, महाप्रभु का अवतार लेना पड़ा, और महाप्रभु के अवतार में उन्होंने उस भाव को जिया, तब जाकर उन्हें समझ में आया कि राधा रानी कितना प्रेम करती हैं। तो हम जीव है, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो ये रूप केवल रूप रह जाएंगे, किताबों में लाल पीला नीला हरा, लेकिन समझ में कभी भी नहीं भी आएगा। इसलिए भक्ति करना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में क्या होता है, लोग दिल दुनिया वालों को देते हैं और दिमाग भगवान को देते हैं। अपना दिल कहां देते हैं, दुनिया वालों को, बाहर गया अपू जी आप ये क्यों कर रहे थे, अच्छा लगता है, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए ना, लेकिन अच्छा लगता है ना। आप देखिए हम लोग कितनी सारी चीज, किसी लोग से पूछिए कि आप ये क्यों पहनते, जैसे हम लोग भारत में आप देखोगे जींस पहन, कोई जींस तो नहीं पहना, माफ करिएगा मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूं, जींस पहनते कई बार, अभी आप देखेंगे धोती कुर्ता कितना पतला होता है, सूख जाएगा, ये भारत की पद्धति है, गंदा रोज धो सकते हैं, दो घंटे में सूख सकता है, पसीना नहीं निकलेगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कंफर्टेबली आप पांव खोल बैठ सकते हैं, लेकिन जींस में क्या है, मोटा होता है, कीटाणु होते हैं, धुल नहीं सकता है, गर्मी लगता है, बेकार दिखता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जींस पहनेंगे क्यों, अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है। धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनेंगे, धोती कुर्ता पहनने के लिए क्लास देना पड़ेगा, कि धोती कुर्ता के जो वैदिक पद्धति है इसके 10 प्रकार के प्रॉफिट होते हैं धोती कुर्ता पहने के, तब लोग धोती कुर्ता पहनेंगे। तो जब भगवान के पास आते हैं तो हम दिल लेके नहीं आते, दिमाग लेके आते हैं, और जब तक पूरा कन्विंस नहीं होगा भगवान आपको शरण नहीं देंगे। और माया शरणम सर्वधर्मान परित्यज्य माया एकम शरणम हो जा, माया को पूरा शरण, क्यों अच्छा लगता है, क्यों माया के शरण में जाना, वहां प्रश्न नहीं पूछते क्यों क्यों, लेकिन भक्तों के पीछे पूछेंगे क्यों क्यों। आपने को हम सबके ही आदत है, हम सब लोग भक्ति में प्रगति क्यों नहीं करते, क्योंकि हर बार हम पूछते हैं क्यों करें। बोले किसी को आप प्रभु जी जब पूरा सुबह सुबह करिए, क्यों शाम को नहीं कर सकते। लेकिन वही अगर हम आपको बोले कि प्रभु जी रात को 12 बजे फिल्म आ रहा आप देखेंगे, हाँ देखें, क्यों अच्छा लगता है क्यों अच्छा लगता है, वहां कभी दिमाग का नहीं करेगा। इसीलिए आप देखिए कि भक्ति चालू ही नहीं हो पाता है, क्या करना है, दिमाग देना है माया को, दिल देना भगवान को, दिमाग देना है माया को, दिल देना है भगवान को। जब माया के पास जाए तो हर बार पूछिए क्यों पहने कपड़ा ये वाला जींस का, क्यों पहने ऐसा, क्यों करें ऐसा। तो आप जब पूछेंगे तो आप देखेंगे कितना खोखला है आधुनिक समाज, और जब आप दिल देंगे भगवान को तो आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे और समझ में आएगा नीला पीला हरा लाल क्या होता है, नीला पीला हरा लाल क्या होता है, नहीं तो दुख रहेगा। एक बार प्रभु यार क्या नाम उनका जो पाकिस्तान में सार्वभौम प्रभु, तो कलकत्ता मंदिर में बैठे क्लास दिए, बोले दिल तो तुम लोगों ने किसको दिया है, दूसरे को, अगर दिल में भगवान को रखा तो इस समय जिसके दिल में जो कुछ भी है सब निकाल कर भगवान को दे दीजिए, क्योंकि दिल में हम क्या रखते हैं बटुआ, यहाँ क्या आता है बटुआ, क्यों बहुत प्रिय है, तो भगवान कैसे आएंगे, तो बोले यहाँ जो बटुआ उसको निकाल के वहां रखिए, और फिर वहां पे आप भगवान का तस्वीर रख, भगवान का तस्वीर आप रख सकते हैं, तब भक्ति चालू हो सकती है। तब हम ऐसा नहीं कि कोई कौन सी सेवा, आप चाहे मोल भाव की सेवा करें ना, उसमें भी आनंद कुंड मिलेगा, क्यों भगवान के लिए कर रहे हैं। तब जब भक्ति चालू होगी तो सेवा में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो मोल भाव की हो कोला विच श्रीधर जैसी, लेकिन उसमें भी क्या मिलेगा आनंद का। और भगवान पूछें क्या चाहिए, मोल भाव करने जाना है मुझे कहां पे मार्केट में, क्यों बहुत आनंद आता है, क्यों आपकी सेवा है, क्यों आपकी सेवा है, निमज्जनता उसमें आप तृप्ति रहते हैं। तदी येषु तगनेषु भक्तिर्जितम् अख्यापयन्तम्, अख्या मतलब अख्खा इंडिया बोलते ना, अख्खा पयन्तम् बहुत जोर जोर की पूरी दुनिया में बोला, क्या बोला भगवान ने, तदी येषु तगनेषु भक्तिर्जितम्, ज्ञान से मुझे ये क्यों क्यों करोगे बहुत कुछ नहीं मिलेगा, क्यों भगवान को पता है वहां क्यों नहीं किया यहां क्यों कर रहे हो, भगवान को आपका अंदर का बाहर का सारी रचना पता है, कि जब वो बाहर जाते हैं हम लोग तो कभी क्यों नहीं पूछते हैं, लेकिन जब भक्तों के संग में आते हैं या भक्ति में जब आगे बढ़ना पड़ते हैं प्रभुपाद किताब पढ़ते हैं प्रभुपाद बोलते ऐसा करो तो मन में आता है क्यों करें, मन में आता है क्यों करें, तो भगवान को पता है। इसीलिए तदी येषु तगनेषु अख्यापयन्तम्, वैसे नहीं पाओ कैसे भक्तिर्जितम्, कैसे पाओगे मुझे भक्ति करें। आज हमने चर्चा की दो तीन चीज उसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने चर्चा की थी शुरुआत में कि भगवान कैसे विभिन्न प्रकार के रूपों में आते हैं, और जो रूप होता है प्रसन्नम वदनम होता है, कैसे भोजनम कमल के जो पत्ते होते हैं उस पर जो प्रसन्न रहते हैं उसका भगवान का स्वरूप कैसे होता है प्रसन्न होता है। फिर हमने देखा कि भगवान की आंखें कैसे हैं, तालाब में जो कमल खिलता है वो भी फीका पड़ जाएगा जो दो मछली सामने हो, और भूमंडले मुनिकृते मकरा ध्वजस्वा, जब भगवान हस्त भगवान के चेहरे में क्रिस्टल की जाते होते हैं जहां कुंडल चमकते हैं, और कुंडल क्यों चमकते हैं क्योंकि उन्हें आभूषण पहना है, और जब वो चमकते हैं गाल पे, और भगवान जब हंसते हैं तो जो ओंठ है रोज की तरह है, जो दांत है वो जैस्मिन बर्ड की तरह वहां पूरा रोजी होता है, और उसको किसी ने देख लिया तो उसका शोक का सागर उड़ जाता है। और भगवान ने अगर अपने भ्रूमंडल को उठा दिया, अपने जो भ्रू को उठाया, तो मकरा ध्वज सम्मोहनम, जो मकर ध्वज है कामदेव जी वो पूरे सम्मोहन हो जाते हैं। तो हमने देखा कैसे हम सब लोग का शोक का सागर बना हुआ है क्योंकि हम भगवान का दर्शन नहीं पा रहे हैं, जब हम दर्शन लेंगे तो हमारा सागर सब पूरा उठ जाएगा। और हमने चर्चा किया कि कैसे हमने कोला जो श्रीधर चाहे वो सेवा केवल मोल भाव की है, उसमें भी केवल बार्गेन में ही केवल गेन होता है अगर भगवान के स्तर पे की जाए, भगवान के लिए की जाए। फिर हमने चर्चा किया कि कैसे स्वयं श्री कृष्ण सोच रहे थे कैसे वो राधा रानी के अंदर क्या है, क्या महसूस कर रही है, मेरे अंदर क्या है, और ये कृष्ण प्रेम होता क्या है। इस चीज को पाने के लिए ज्ञान कर्म ध्यान कुछ काम नहीं आया था भगवान को स्वयं, और स्वयं उनको इसको आके प्रैक्टिस करना पड़ा, तब जाके उन्हें समझ में आया क्या हुआ। तो अगर हम लोग भक्ति नहीं करेंगे तो हमें कभी समझ में नहीं आया, भक्ति करना पड़ेगा हमको भगवान। ज्ञान कर्म ध्यान और समाधि और योग, इन सब चीजों का आप सहयोग ले सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों से आप भगवान को नहीं पा सकते हैं। उसके लिए हमें भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे, हमने उसके पीछे समझा, क्योंकि हमने दिल बाहर लगा दिया है और दिमाग यहाँ लगा दिया है। इसको उल्टा करेंगे तो हमारा भक्ति चालू रहेगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की।